नमस्कार, आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार सचिन गौर से। 22 फरवरी 2019 के इस बुलेटिन में शामिल है। जम्मू कश्मीर राज्य के पुलवामा जिले में आत्मघाती बम हमले की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कठोर शब्दों में निंदा की। दक्षिण सूडान में मानवाधिकारों का हनन जारी, महिलाएं और लड़कियां यौन हिंसा का हो रही हैं शिकार। और 21 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। जानिएगा यूएन में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि से कि भाषाओं का संरक्षण जरूरी क्यों है। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर राज्य के पुलवामा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के काफिले पर आत्मघाती बम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। सुरक्षा परिषद ने इसे जघन्य और कायराना हमला करार दिया है। 14 फरवरी को हुए इस हमले में 40 सीआरपीएफ सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देशों ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सुरक्षा परिषद की ओर से जारी वक्तव्य में जैश ए मोहम्मद संगठन का उल्लेख किया गया है, जिसने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। बयान में कहा गया है कि आतंकवाद अपने हर स्वरूप और आकार में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में एक है। सुरक्षा परिषद ने हमले के दोषियों, उनके सहयोगियों और उन्हें धन मुहैया कराने वालों की जवाबदेही तय करने और उन्हें सजा दिलाने की जरूरत को रेखांकित किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के अंतर्गत जो दायित्व तय हुए हैं उन्हें पूरा करने और भारत सरकार के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने की भी बात कही गई है। सुरक्षा परिषद ने दोहराया है कि कोई भी आतंकी कार्रवाई आपराधिक है जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो किसी ने भी की हो, किसी भी मंतव्य से की हो। सुरक्षा परिषद ने कहा है कि आतंकवादी हमलों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो खतरा पनप रहा है उससे सभी देशों को निपटने की जरूरत है। यमन में सरकारी सुरक्षा बलों और हूती विद्रोहियों की हिंसा प्रभावित इलाकों से पुनः तैनाती किए जाने वाली योजना के पहले चरण पर सहमति बनना दर्शाता है कि दोनों पक्ष स्टॉकहोम समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं। यमन के लिए यूएन महासचिव के विशेष दूत मार्टिन ग्रिफिथ्स ने सुरक्षा परिषद को ये जानकारी दी है। हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले बंदरगाह शहर हुदायदा और आसपास के इलाकों से सैनिकों और हूती लड़ाकों की वापसी होने और मानवीय राहत के लिए रास्ते खोले जाने के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त एक टीम मध्यस्थता कर रही है। उन्हीं प्रयासों के अंतर्गत पुनः तैनाती योजना के पहले चरण पर सहमति बन गई है।
There have, as I reported before, been signs of increased civilian activity in Hodeida, and the people of the city are already at this very.
हमें संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं कि नागरिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। शुरुआती दिनों में ही स्थानीय लोगों को इस समझौते से लाभ मिलना शुरू हो गया है। ये थे विशेष दूत मार्टिन ग्रिफिथ्स। हिंसा के चलते हाल के महीनों में प्रभावितों को मानवीय राहत प्रदान करना और खाद्य भंडारों तक पहुंचना मुश्किल साबित हुआ है। एक मिल में बड़ी मात्रा में अनाज का भंडार है, जिससे 37 लाख लोगों को एक महीने तक पर्याप्त भोजन दिया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा हालात के चलते वहां पहुंचने में देरी हुई है। पिछले कुछ सालों से यमन सरकार और हूती लड़ाकों के बीच चले संघर्ष से करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं और उन्हें तत्काल मानवीय राहत की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि खाद्य प्रणाली को मजबूत आधार प्रदान करने वाली जैव विविधता धीरे धीरे गायब हो रही है। इससे भोजन, आजीविका, स्वास्थ्य और पर्यावरण के भविष्य के लिए बड़ा खतरा पैदा होता जा रहा है। भोजन और कृषि के लिए दुनिया में जैव विविधता की स्थिति के नाम से जारी ये रिपोर्ट अपनी तरह का पहला अध्ययन है। रिपोर्ट में सचेत किया गया है कि अगर जैव विविधता का क्षरण होता रहा और भोजन प्रणाली को सहारा देने वाली प्रजातियां लुप्त होती गईं, तो उन्हें फिर बहाल करना संभव नहीं होगा। भोजन और कृषि के लिए पैदा हो रही चुनौतियों से निपटने के लिए जिन प्रयासों पर जोर दिया गया है उनमें नीतिगत और सांस्थानिक ढांचा तैयार करने, जैव विविधता संरक्षण को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। दक्षिण सूडान में जारी मानवाधिकार हनन के मामलों के चलते हजारों लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। इससे चिंतित मानवाधिकार आयोग ने स्थानीय प्रशासन और अन्य पक्षों से 5 महीने पहले शांति समझौते पर नए सिरे से हुई सहमति का सम्मान करने की बात कही है। समझौते को प्रभावी रूप से अमल करने का आग्रह किया गया है। दक्षिण सूडान की स्थिति पर जिनीवा में मानवाधिकार परिषद को सौंपी जाने वाली तीसरी रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं। इसके अनुसार लगातार हो रहे बलात्कार, यौन अपराधों और मानवाधिकारों के हनन को युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से गांवों पर हमले हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, महिलाओं को यौन दासी बनाया जा रहा है, उसका एक निश्चित स्वरूप है और अपराध इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां सजा मिलने का डर खत्म हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार दशकों तक हिंसा होने और जवाबदेही तय न हो पाने की वजह से ही दक्षिण सूडान में फिर से मानवाधिकार हनन हो रहा है। स्थायी शांति के लिए वास्तविक और विश्वसनीय ढंग से जवाबदेही निर्धारण और न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि हजारों पीड़ितों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसका उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है। गुरुवार 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित रखने और उसके प्रचार प्रसार की अहमियत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए गए। इस दिवस का मूल 21 फरवरी 1952 में है, जब ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तत्कालीन पाकिस्तान सरकार के उस आदेश का विरोध किया था जिसमें सिर्फ उर्दू को ही राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन में बांग्लादेश के प्रयासों के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुरुआत हुई। कुछ अनुमानों के मुताबिक हर दो हफ्ते में एक भाषा विलुप्त हो जाती है। इसके साथ ही उस भाषा में बात करने वाले और उनसे जुड़ी संस्कृति भी खो जाती है और ये चिंता का कारण है। यूएन समाचार से बातचीत में संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि मसूद बिन मोमिन ने बताया कि भाषाओं को बचाना विरासत के संरक्षण से जुड़ी बात है।
We have to protect our heritage and our culture, existence. For example, there are small island states in the world today, and if the sea level rise, some of them will face existential problem.
हमें अपनी विरासत, अपनी संस्कृति और अस्तित्व को बचाना है। उदाहरण के तौर पर स्मॉल आइलैंड स्टेट्स लघु द्वीपीय देश हैं और अगर समुद्री जल स्तर बढ़ता है तो उनके अस्तित्व को लेकर समस्या हो जाएगी। ऐसे में आप उन्हें क्यों बचा रहे हैं? उनकी जनसंख्या भी ज्यादा नहीं है, कुछ की सिर्फ हजारों में है और वे आसानी से अन्य देशों में बस सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और वहाँ के निवासी मानते हैं कि उन देशों से उनकी पहचान जुड़ी है। इसी तरह भाषा भी अपने आप को पहचानने और बच्चों के लिए अतीत और पुरानी पीढ़ियों से जुड़ने का जरिया है। हमने बांग्लादेश में एक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा केंद्र की स्थापना की है जिसमें भाषाओं के संरक्षण और प्रसार पर शोध होगा। साथ ही जातीय अल्पसंख्यकों को पहला सबक उनकी अपनी भाषा में सीखने में मदद करने के लिए भी हम योजना शुरू कर रहे हैं। बांग्ला और अंग्रेजी में पढ़ने की सुविधा तो है ही, हमें अपने अतीत से जुड़ी हर बात को बचाकर रखने की जरूरत है और भाषा सांस्कृतिक पहचान का सबसे अहम स्वरूप है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अपनी मातृभाषा में कोई कहावत को साझा करना चाहेंगे तो उन्होंने कहा,
We have one that is called Shobure Mewa Phale, which means if you wait and have patient,
हमारे पास एक कहावत है शबूरे मेवा फले। इसका ये अर्थ है कि अगर आप प्रतीक्षा करें और संयमित रहें तो आपको परिणाम मिलता है। अधीर न हो और एक ही दिन में सब पाने की कोशिश न करें। ये थे संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि मसूद बिन मोमिन। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।